जो मन भावनी विरासत है उस श्रृंखला का यह आखिरी सत्र होगा।
We will be taking on a new topic from next week।
अगले हफ्ते से हम एक नए विषय को लेकर बातें करेंगे।
Most probably because we are trying to get something printed out।
और खास करके कि हम कुछ छपाना चाहते हैं, कुछ किताबों को छपना चाहते हैं।
Yeah, in Hindi it's taking some time, so otherwise next Sunday we will kick off a new series।
हिंदी में वो पुस्तिकाओं को बनाने के लिए समय हो रहा है, इसके लिए नहीं तो अगले हफ्ते हम शुरू करते।
So Hebrews chapter 10 verse 32 onwards।
तो इब्रानियों का 10वां अध्याय 32 वचन से आगे।
The topic what I want to share today is the true inheritance।
और जो विषय मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ वो सच्ची विरासत क्या है।
Says, remember those earlier days after you had received the light, when you endured in a great conflict full of suffering. Sometime you were publicly exposed to insult and persecution. At other time you stood side by side with those who were being treated, those who were so treated. You suffered along with those in prison and joyfully accepted the confiscation of your property because you knew that you yourself had better and lasting possessions. So do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. For in a just a little while, He who is coming will come and will not delay. And but my righteous one will live by faith. I take no pleasure in the one who shrinks back. But we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but to those who have faith and are saved.
32वें वचन से इब्रानियों के 10वें अध्याय। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यो कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यों कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हिम्मत न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा।
Chapter 11, you know the chapter 11 is the chapter on faith.
और 11वां अध्याय आप जानते हैं वो विश्वास की बातों को लेकर है।
It starts by saying by faith 20 times it said by faith men of God achieve things for God's glory.
और उसमें विश्वास शब्द का जिक्र 20 बार किया है, हर समय ऐसा कहा गया है विश्वास ही से लोगों ने विजय पाया।
But I want to just show two scriptures at the end.
लेकिन अंत में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण वचन भी दिखाऊंगा।
Hebrews 11 verse 39 and 40 and I want to just share a few thoughts.
और इब्रानियों के 11वें अध्याय का 39 और 40वां वचन, और फिर मैं बाद में बांटूंगा।
It says these were all commended for their faith, yet none of them received what had been promised. Since God had planned something better for us, so that only together with us that they would be made perfect.
और 39वां वचन कहता है, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे।
These passages that I read this morning,
और इस सुबह यह जो परिच्छेद मैंने पढ़े,
these speaks about believers' inheritance.
और यह जो विश्वासी का एक विरासत है उसके बारे में बताया है।
Michael Eaton, one of the great theologian of this century.
और इस सदी के जो खास अभ्यासक है माइकल ईटन, उन्होंने कहा है,
He said the book of Hebrews is about inheritance and rewards, not about salvation.
और इब्रानियों का यह जो किताब है वो उद्धार के बारे में नहीं बल्कि पुरस्कार और विरासत को लेकर है.
Many look at the scriptures in Hebrews 6 and Hebrews 10 and wonder, you know, can a Christian lose their salvation?
और इब्रानियों के छठे अध्याय में देखकर और कुछ वचनों को देखकर कुछ कहते हैं कि क्या मसीह अपने उद्धार को खोएगा भी?
And these scriptures that you know we read today, it speaks about there's something that has been promised and that we will receive it together as believers.
और यह जो वचन हमने पढ़े वो पुरस्कार को लेकर और वो सफलता को लेकर उसके बारे में है और वो हमें आगे मिलने वाला है उसके बारे में ये
says, you know, better and lasting possessions.
और अच्छा और महान ऐसी जो हमारी विरासत है
you
उसको पाने के लिए
what has been promised.
और जो वादा किया है वो तुम्हें मिलेगा.
Don't throw away your confidence for it will be richly rewarded.
और तुम्हारे आत्मविश्वास को खो नहीं क्योंकि तुमको भरपूरी से मिलेगा.
Last Sunday Pankaj spoke about the Israelites, you know, their journey.
और पिछले हफ्ते इजरायली लोगों की जो यात्रा सफर थी उसके बारे में पंकज ने हमें बताया.
God had called them into the promised land.
और परमेश्वर ने उनको वाचा की भूमि में बुलाया था.
It took 40 years to reach there, even though it had just, you know, 3 weeks journey.
और 3 हफ्ते की सफर थी लेकिन वहां उनको 40 साल लग गए.
A land flowing with milk and honey.
और दाख और मधु और दूध से बहने वाली वो भूमि.
Was it the lasting possession that God wanted to give them?
क्या वो ऐसी चीजें थी जो हमेशा रहने वाला उनके साथ ऐसी बातें थी वो?
People reached there, they lived there and they died there.
और लोग वहां गए वहां रहे और फिर वो मर गए.
And 1 Peter chapter 3:10 says even this earth and everything in it will be burned up one day and there'll be new heaven and new earth.
और एक पत्रस के 3 अध्याय में भी यह लिखा है कि एक दिन वह सारी जो पृथ्वी है वो सब जल जाएगी खत्म हो जाएगी फिर नया स्वर्ग और पृथ्वी वहां पर बनेगी.
Did these people receive their inheritance?
तो क्या इन लोगों को अपनी विरासत मिली?
Did they receive what God was promised?
और जो परमेश्वर ने वादा किया था क्या उनको वो मिला?
In Hebrews chapter 11 it says, you know, it's together with us that they will receive.
और इब्रानियों के 11वें अध्याय में वहां पर बताया कि हमारे साथ वो बातें उनको मिलेगी.
None of them receive what have been promised.
और उनको जो वादा दिया था वो नहीं मिला.
You know, who endured so much suffering and really stood in faith and fought so many battles.
और वो विश्वास में मजबूती से खड़े रहे युद्ध किया उन्होंने कई सताओं को स्वीकारा.
So this morning I want to share what is the true inheritance the Bible talks about.
और बाइबल क्या एक सही या सच्ची विरासत है उसके बारे में बताता है उसके बारे में मैं आज बताऊंगा.
You know Hebrews 10 speaks about the present day, those days, the Christians, the suffering that they were going through.
और इब्रानियों का 10वां अध्याय में बताता है उस समय के लोग जो मुश्किल से या तकलीफों से गुजर रहे थे.
Hebrews 11 talk about the ancient saint, the Old Testament, the Jews, what they had gone through.
और 11वें अध्याय में बताया है कि पहले के जो पहले होकर गए जो परमेश्वर के लोग वो कौन सी मुश्किलों से गए उसके बारे में है. और अंत में बताया है कि हम सब साथ में मिलकर वो विरासत को पाएंगे.
True inheritance Bible talking about.
तो शास्त्र ये क्या बताता है क्या है वो सच्ची विरासत.
I have just 3 things.
और 3 बातें मैं आपको
बताऊं. Number one.
सबसे पहला.
A new identity in Christ. That's our inheritance.
और हमारी यीशु मसीह हमें एक नई पहचान वो हमारी विरासत है.
Gospel of Jesus Christ has given us a new identity.
और यीशु के सुसमाचार ने हमें एक नई पहचान दी है.
Hallelujah.
Hallelujah.
The Bible says if anyone is in Christ he is a new creation.
शास्त्र में लिखा है अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है.
The old has gone and the new has come.
पुराना चला गया है और सब नया हुआ है.
He talks about a brand new man.
और वो पूरी तरह नए मनुष्य को लेकर बात करता है.
I don't know how whether you are excited about that.
मुझे पता नहीं क्या आप इस बात को लेकर उत्साहित हैं.
I am excited.
लेकिन मैं उत्साहित हूँ.
The Bible calls us new creations.
और शास्त्र हमें बताता है कि हम नई सृष्टि हैं.
This is our new identity.
और यह हमारी नई पहचान है.
Whether you feel it or not, we are new creations in Christ.
भले आपको महसूस होता है या आपको लगता है वो मायने नहीं रखता बल्कि हम नई सृष्टि है.
There is a righteousness by faith that has been revealed in the gospel.
और विश्वास के द्वारा धार्मिकता हमारे लिए दी गई. थैंक यू.
यू नो द इट सेज इन रोमन्स, पॉल सेज आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल बिकॉज इट इज द पावर ऑफ गॉड अनटु सल्वेशन ऑफ ऑल दोज हु बिलीव.
और इसलिए पौलुस कहता है कि सुसमाचार से मैं लज्जित नहीं होता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने उसके द्वारा मुझे सामर्थ्य दिया.
रोमन्स 1 वर्स 16 एंड 17.
और रोमियो का पहले अध्याय का 16वां और 17वां वचन.
It says, you know, in the gospel, the righteousness of God has been revealed. Verse 17.
और 17वें वचन में लिखा है कि सुसमाचार में ही परमेश्वर के सामर्थ्य का प्रकट होता है.
It says, in this gospel,
और उसके सुसमाचार में
a righteousness has been revealed.
और उसकी धार्मिकता प्रकट की गई है.
From first to last.
और शुरुआत से अंत तक.
For it is written, the righteous shall live by faith.
क्योंकि लिखा है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा.
This is an amazing truth.
और यह बहुत ही अद्भुत ऐसी सच्चाई है.
You have been made righteous the moment you repented and you put your faith in Jesus. God declares you righteous.
और परमेश्वर ने जैसे आपने अपने पापों का कबूल किया, यीशु में विश्वास रखा, आपको पूरी तरह धर्मी ठहरा.
Hallelujah.
Hallelujah.
You know, today people are, you know, spending so much of money for their guilt to be removed.
और आज लोग इतना पैसा खर्च करते हैं अपने ऊपर का दोष हटाने के लिए.
They are willing to pay any amount to, you know, to really just get their guilt removed from their lives.
और अपने जीवन से वो सारा दोष हटाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा करने के लिए भी वो तैयार
हैं. They are willing to do any penance.
और कुछ भी प्रकार की वो शिक्षा स्वीकार करने के लिए तैयार
हैं. What is that, अमरनाथ यात्रा? Yeah.
कुछ लोग अमरनाथ यात्रा में जाते हैं.
You know, go for any pilgrimage so that they can feel free from guilt.
और कोई ऐसी pilgrimage यात्रा को जाते, धार्मिक यात्रा को भी जाते ताकि उनको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मेरे दोष खत्म हो गए.
Bible says in the gospel righteousness is being revealed.
लेकिन शास्त्र में लिखा है सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट की गई है.
Hallelujah.
Hallelujah.
You know, not only that, you know, you've been declared righteous, but you have been, you know, righteousness has been imputed to you.
और सिर्फ आपको आपको घोषणा नहीं किया है कि आप धार्मिक बन गए हैं, बल्कि धार्मिकता आपके अंदर डाली गई है.
How many of you have taken injection for what is that? Immunization, vaccination, have you taken?
और कितने लोगों ने जब आप छोटे थे इंजेक्शन लिया है ताकि आपको कोई बीमारी ना आए?
Little Nehemiah must be taking now some of these injections.
Nehemiah, आप छोटा है, शायद आप इंजेक्शन के समय लेता होगा इंजेक्शन.
No, the Bible says God has injected His righteousness into you by the Spirit.
और परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हमारे अंदर वो भर दिया है धार्मिकता.
Hallelujah. Are you excited?
क्या आप उत्साहित हैं?
You know, the day you became a Christian, He put a new spirit and a new heart in you.
जिस दिन आप मसीह बने, उस दिन आपके अंदर नया हृदय और नया आत्मा भर दिया है.
Whether you like it or not.
भरे आपको पसंद है या नहीं?
He did a surgery on you.
और उसने आप पर शस्त्रक्रिया किया है, ऑपरेशन किया है.
Hallelujah. Today you have a new heart and a new spirit.
आज आपके पास नया हृदय और नया आत्मा है.
Only problem, you don't have a new mind.
मुश्किल यह है कि आपके पास नया मन नहीं है.
You have to renew your mind.
आपके मन को नया बनाना है.
But a new heart and a new spirit has been given to you.
और आपको नया आत्मा और नया हृदय दिया गया है.
And you have a direct access to the Father.
और आप सीधे सीधे पिता परमेश्वर से संपर्क कर सकते हैं.
You are a child of God.
आप परमेश्वर की संतान है.
That is your new identity.
और वो आपकी नई पहचान है.
You have been adopted as sons and daughters of God.
आप स्वीकारे गए हैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां.
This is what the gospel provides.
और यही सुसमाचार
देता है. This is your inheritance.
और यह तुम्हारी विरासत है.
It is not money and possession, but this is eternal standing before God.
और यह सब पैसा और संपत्ति की बातें नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामने अनंत काल तक ये बातें तुम्हारे लिए है.
You know, Stanley Mehta, one of our friend who is a pastor.
और स्टैनली मेहता जो हमारे एक मित्र है, पासवान है.
He shares this lovely insight.
और वह इसकी बात बताते हैं बहुत खूबसूरती से.
He's got three children.
और तीन बच्चे हैं उनके.
He's got two daughters.
और दो बेटियां हैं उनकी.
And he has an adopted son.
और उन्होंने एक बेटे को गोद में लिया है.
And the son would always boast about this to his sisters.
और वो जो बेटा है वो अपनी बहनों को देखकर हमेशा इस बात का जिक्र करता है.
He says, see, your father and mother did not have a choice in having you.
और जब तुम पैदा हो गए तो तुम्हारे माता पिता के पास कोई चुनौती नहीं थी.
But they chose me.
लेकिन उन्होंने मुझे चुन लिया
है. They had a choice and they chose me.
और उनके पास वो चुनौती थी और उन्होंने मुझे चुन लिया.
They didn't choose you. You just came along.
और बस तुमको उन्होंने चुना नहीं गया, तुम बस आ गए.
God chose you.
परमेश्वर ने आपको चुन लिया है.
The Bible says you did not choose me, but I chose you.
और बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुना हूँ.
Hallelujah.
Hallelujah.
This is an amazing truth.
और यह बहुत ही अद्भुत ऐसी बात है.
You don't need to go through as children. You don't need to go through anybody. You can go directly to God.
और तुम किसी के द्वारा, किसी याजक के द्वारा तुम्हें परमेश्वर के पास नहीं जाना है. तुम सीधे सीधे परमेश्वर के पास जा सकते हो.
एवरी रिलीजन टॉक्स अबाउट हैविंग मीडिएटर्स.
और हर एक धर्म हमेशा कोई मध्यस्थी होना है उसके बारे में बात करता है.
यू वांट टू गो टू शिवा, यू गॉट टू गो थ्रू समबडी एल्स और व्हाटएवर. यू वांट टू गो टू जीसस, यू गॉट टू गो थ्रू मैरी एंड सेंट्स. बट द बाइबल सेज यू कैन गो डायरेक्टली टू जीसस.
और आप ऐसे कोई देवता के पास जाना है तो आपको किसी के जरिए जाना पड़ेगा, लेकिन यीशु के पास आना है, परमेश्वर के पास आना है तो आप सीधे सीधे आ सकते हो.
यू कैन गो टू हिम इन प्रेयर.
और आप प्रार्थना में उसके पास जा सकते हो.
You know, you can pray individually, you can pray together, because when people together pray, there is power.
और आप अकेले प्रार्थना कर सकते हो, साथ में मिलकर प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि जब हम साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं वहाँ सामर्थ होता है.
But knowing that you have an access to God, it brings so much of faith.
लेकिन यह जानकर कि हमारे लिए सीधा सीधा रास्ता है उसके पास जाने के लिए, तो वो बहुत ही बातें अच्छी हो
जाती है. Sometimes Sunday after Sunday, or you know, people go come. In the front and say, please pray for me. Please pray for me.
बहुत से समय एक रविवार के बाद दूसरे रविवार लोग आगे जाते हैं, बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो.
You know, I got a headache.
मुझे सर दर्द है.
This thing is paining. That thing is
मेरी
paining.
ये कमर दुख रही है, मेरी ये पीठ दुख रही है.
It's okay. You can ask.
हाँ ठीक है, आप प्रार्थना मांग
सकते
हैं.
But you know something?
लेकिन आपको पता है एक बात?
You can ask him directly.
आप उससे सीधे सीधे मांग सकते हैं.
You don't need to come to your pastor.
और आपके पास्टर के पास आपको आने की जरूरत नहीं है.
You can go to him.
आप उसके पास.
He's got more power.
उसके पास और सामर्थ है.
Yeah, you can go to him and he answers your prayers.
और आप उसके पास जाकर प्रार्थना करेंगे तो उत्तर देता है.
Yeah. Please come, otherwise our job will be at risk. You know, if nobody comes to pray, ask for prayer.
ये नहीं कर रहा हूँ, आप जरूर आइए प्रार्थना करने के लिए, नहीं तो हमारी
नौकरी. But you can go to him directly.
लेकिन आप उसके पास सीधे सीधे जा सकते हैं.
The veil has been torn into two.
और वो पर्दा हट गया है, वो
from
दो भागों में बांटा गया है. और ऊपर से नीचे.
What divided man from God has been opened? Hallelujah.
मनुष्य के लिए रास्ता खुल गया है.
You know, today we, you know, the new identity speaks. We can have revelation. From God.
और हमारा ये नया पहचान है वो परमेश्वर से एक प्रकार से हमारे लिए प्रकटीकरण की बात है.
Jeremiah says, you don't need to go and tell your neighbors, know the Lord, he himself will know him because God reveals himself to him.
और यिर्मयाह कहता है तुम ये नहीं कहते रहना चाहिए परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को जानो, वो खुद तुम्हारे सामने है.
God speaks to us.
और परमेश्वर हमसे बात करता है.
What did I say?
मैंने क्या कहा?
God speaks to us.
परमेश्वर हमसे बात करता है.
God speaks to you and me.
और परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करता है.
Hallelujah.
Hallelujah.
Say to the person next to you, God speaks to us.
अपने पड़ोसी से कहो परमेश्वर मुझसे बात करता है.
2 days back, I was having a nice siesta in the evening after coming back from work.
और मैं काम से आने के बाद घर में मैं थोड़ा सा आराम कर रहा था.
And I dozed off to sleep.
और मैं बस नींद लग गई.
You know, while I was sleeping, God gave me a clear scripture.
और जब मैं सो रहा था परमेश्वर ने मुझे एक स्पष्ट रीति से एक वचन दिया.
It says this book, this chapter, this verses.
और उन्होंने कहा कि यह किताब, यह अध्याय और यह वचन.
And I got up and I read that.
और फिर मैं उठ गया और मैंने पढ़ा उसे.
And exactly what I've been asking God for.
और बस वही था जो मैं परमेश्वर को पूछ रहा था, मांग रहा था.
I felt such faith and grace coming upon me.
और मुझे ऐसा महसूस हुआ विश्वास और अनुग्रह मैं पा रहा हूँ.
You don't have to go to the tota. What is that tota wala?
Correct.
Palm parrot. Reader or the parrot reader, you know, you don't go and show your hand. God speaks to you.
और आपको जाके वो तोते के पास जो आपके जीवन के बारे में बताता है उसके पास जाने की जरूरत नहीं, आप परमेश्वर से बातें करो, परमेश्वर आपसे बात करेगा।
When you go to him, he tells you half the lies.
जब आप ऐसा करने के लिए जाते हो,
half truth and half lies.
झूठ बोलता है, आधा सत्य आधा झूठ,
full lies.
Okay, पूरा झूठ ही बोलता है.
You know, they tell you little bit of truth to hook you up. You know, just to make you believe.
बोलते हैं आपको ताकि आप विश्वास करें, ताकि आप उसके अंदर उनके उनके पास पकड़े जाएं.
My mother had got my what is that kundli written down when I was born.
Franco बता रहे हैं कि उनकी माँ ने वो कुंडली बनाई थी जब उनका जन्म हुआ था.
And it says clearly in that book, at the age of 21, he will, you know, his life will change.
और वहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा था 21 साल में उनका जीवन बदल जाएगा.
And that's what happened at the age of 21. I got to know the Lord. I gave up my job and I started following Jesus.
और वही हुआ 21 साल में मैंने नौकरी को छोड़ा और पूरे समय परमेश्वर के लिए कार्य करने लगा.
And in that same book it says after 31 he will give up all that. He reaches 31, he will give up all that.
और उस कुंडली में वह भी लिखा था कि 31 साल के बाद वो सब कुछ छोड़ देगा.
You know, that's why my sister is to make fun of me. Hey, this is only for 10 years. After that, you will give up all
this. तो मेरी बहन है वो मजाक करती थी मेरा, कहते हुए ये 10 साल के लिए है.
अब I'm still excited about Jesus. Now I'm 52. Hallelujah.
52 साल का हूँ मैं, अभी भी उत्तेजित हूँ यीशु को लेकर.
Hallelujah. The new identity in Christ is our inheritance.
और यीशु मसीह हमें हमारी जो पहचान है वो हमारी विरासत है.
In that, all these things are included.
और उसमें ये सारी बातें जुड़ गई है.
The message of grace.
और अनुग्रह का संदेश.
You know, today we have this amazing truth which is full of grace.
और आज हमारे पास यह सारी बातें हैं जो संपूर्ण अनुग्रह से भरी हुई है.
It's not through law that you are justified, but by grace you have been justified.
और कानून या नियम से आपका न्याय नहीं होता, बल्कि अनुग्रह से ही आपका.
Law was a burden, but grace has come to lift you up and give you life.
और नियम जो थे वो आपके लिए बोझ बन गए थे, लेकिन अनुग्रह है आपको आजाद करने के लिए आया है.
Walking in grace is such a joy.
और अनुग्रह में चलना इतनी आनंद की बात
है. You know, we don't have do's and don'ts in our church.
पास ये करना वो करना ऐसा नहीं है.
You know, some Christians ask, some Christians were asked questions like this.
और कुछ मसीहियों ने इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं.
Is dancing allowed in your church?
नाचना आपके कलीसिया में हो सकता है क्या?
Do you allow your people to watch movies?
क्या आप अपने लोगों को पिक्चर देखने के लिए मना करते हैं या खुला छोड़ते हैं?
One pastor in South India told me.
साउथ इंडिया में एक पासवान है, उन्होंने कहा मुझे.
Says we don't watch any movie.
हम कोई पिक्चर नहीं
देखते. We tell the church movies from the devil.
और हम कलीसिया के लोगों को कहते हैं पिक्चर जो है शैतान की ओर से है.
We don't allow our children to watch.
और हमारे बच्चों को भी हम मना करते हैं.
And we feel so good.
और हमें अच्छा लगता है.
Later I met their son.
और उसके बाद मैंने उनके बेटे से मेरी मुलाकात हुई.
And he was telling me all about the movies that he has watched.
और वो सारे जो पिक्चर उसने देखे थे उसके बारे में वो बता रहा था.
And he says don't tell my dad and mom.
और वो कह रहा था कि मेरे मम्मी डैडी को नहीं बताना.
We live by grace.
हम अनुग्रह से जीते हैं.
You know, the one who made the law is in us.
और जिसने नियम को बनाया वो हमारे अंदर है.
The one who gave the lawgiver is with you.
और जिसने वो नियम बनाया दिया वो हमारे अंदर है.
It's a different subject. We can go into it.
और वो एक अलग विषय है, हम उसको देख सकते हैं.
We are people of grace.
और आज हम अनुग्रह के लोग हैं.
Forgiveness.
और क्षमाद करना.
It's part of our inheritance.
और वो हमारे विरासत का एक भाग है.
So beautifully shared this morning.
और सनी ने इतने अच्छे से इस सुबह बताया.
We have received forgiveness.
हमने क्षमा को पाया है.
God can forgive every sin.
और परमेश्वर हर एक पाप को क्षमा कर सकता है.
That's the message of the gospel.
और यह सुसमाचार का संदेश
है. There isn't any sin that Jesus has not died for.
और ऐसा कोई भी पाप नहीं जिसके लिए यीशु नहीं मरा है.
There isn't no person in this world who cannot become a child of God by believing in Jesus.
Aur aisa koi vyakti nahi is duniya mein jo Yeshu ko swikar karke Parmeshwar ka bachcha nahi ho sakta hai.
We have a new identity in Christ.
Aur hamare paas Yeshu Masih mein ek nayi pehchan hai.
Unless we know that identity, we cannot live our Christian life.
Aur jab tak hum us pehchan ko nahi jante hain tab tak hum hamare masih jeevan ko nahi jee sakte.
We will not know our true inheritance.
Aur hum hamari sachi विरासत को नहीं समझ
सकते. We will not be able to live the fullness of life that God wants to bring.
और परमेश्वर जो परिपूर्णता का जीवन हमें देना चाहता है वो शायद हम पूर्णता से नहीं जी पाएंगे.
What is the second one?
और दूसरी बात क्या है?
The first one is new identity in Christ.
पहली बात है जो यीशु मसीह हमें नहीं पहचान.
The second one is life in the Spirit.
और दूसरी बात है आत्मा में जीवन.
Today we have life in the Spirit.
आज आत्मा में जीवन है हमारे पास.
We have received the down payment of our inheritance.
और हमारी विरासत का जो भाग है वो हमने पाया है.
Ephesians 1 verse 13. This is what it says.
और इफिसियों के पहले अध्याय का 13 वचन ऐसा उसमें लिखा है.
When you believe, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit.
और जब तुमने विश्वास किया तब तुम्हारे उद्धार का जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी.
God gave us the Holy Spirit.
और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया.
It's only a seal, it's only a down payment.
और बस वो थोड़ा सा जो पहला भाग जो मिलने का है वो मिला है.
What we would experience in heaven, the fullness God has given us the grace to enjoy that even now.
और जो पूरी तरह हमें स्वर्ग में मिलने वाला है परमेश्वर ने हमें यहाँ पर थोड़ा आनंद उठाने के लिए दिया है.
You know, Jesus in his last speech before he died, this is what he said, John 14 verse 16 and 17.
और यीशु मरने के पहले योना के 14वें अध्याय में 16वें 17वें वचन में यह कहता है.
He says, I will ask the Father and he will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of Truth.
और मैं पिता को पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे.
The world cannot accept him.
और दुनिया उसे नहीं पहचान
Because
सकती है.
Because it neither sees him nor knows him.
क्योंकि वो उसे देखती भी नहीं और जानती भी नहीं.
But you know him, for he lives with you and will be in you.
क्योंकि परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि Thank you. तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा.
He says he will be with you and he will be in you.
और वह तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे अंदर होगा.
The miracle of New Testament, the message of the New Testament is that the Holy Spirit has come to be with us and to be in us so that we can live out the life that God wants us to live out.
और नए करार के सुसमाचार के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा और हमारे साथ में भी
रहेगा. John the Baptist said this.
और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने
यह लिखा. The one who is coming after me will baptize you with the Holy Spirit and fire.
और जो मेरे पीछे आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा.
Baptized, empowered by the Holy Spirit. This is our inheritance.
और यह हमारी विरासत है कि हमने वो सामर्थ्य पाया है उस पवित्र आत्मा को पाया है.
Let me just share a small story in the Old Testament.
और पुराने नियम में एक कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ.
I'll quickly share.
और जल्दी से बताता हूँ.
In the Old Testament there was something called the Ark of the Covenant.
और पुराने नियम में वाचा का संदूक था.
And you know that's where this is called the Ark of the Covenant.
और यह वाचा का संदूक है.
And the, you know God dwelt between the cherubims.
और परमेश्वर की उपस्थिति इन दोनों के बीच में या करुबों के बीच में थी.
And the Ark of the Covenant represented the presence of God.
और यह जो वाचा का संदूक है वो परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में
था. Even last week Pankaj was sharing about when they crossed the Jordan, they took the ark and they stood in that river and the river parted.
और पिछले हफ्ते पंकज ने बताया कि वो यर्दन नदी में वो वाचा का संदूक वहां पर रखे और फिर वो दुभाग गई.
And the, you know, wherever they went, they took the Ark of the Covenant.
और जहाँ कहीं वो गए, वो वाचा के संदूक को लेकर गए.
If you read the book of Samuel,
अगर शमूएल की किताब को अगर आप जानेंगे, पढ़ेंगे,
you see that the Ark of the Covenant was taken by the Philistine army.
और वहाँ पर आपको पता चलता है कि पलिस्तियों ने वो वाचा के संदूक को लिया था.
And the Ark was put in the temple of the dragon.
और वो एक अजगर का मंदिर है वहां पर उसको रखा गया था.
And the next day when the people came, they saw that the dragon or dragon is fallen flat on the face.
और दूसरे दिन वो जब आए वहां पर उन्होंने देखा कि वो जो अजगर देवता था वो गिर पड़ा था जमीन पर.
They put him up again.
और फिर उन्होंने उठाकर उसे फिर से सीधा किया.
The next day when they came again, the same thing happened.
और दूसरे दिन वो आए वहां पर वो फिर से वो मूर्ति गिरी थी नीचे.
And within few time, the people were there were plague that broke out in the entire nation of Philistine.
और कुछ ही समय में वहां पर वो पूरे एक बीमारी फैल गई फिलिस्तीनियों में.
And they said this the reason is the ark of the covenant. Let's send away this ark.
और उसका कारण यह था कि यह जो वाचक का संदूक था वो वहां उनके बीच में था, तो चाहिए हम इसको भेज दें वापस लौटा
दें.
और फिर उन्होंने उसे वापस लौटा दिया.
एंड फाइनली इट केम इनटू अ होम ऑफ अ मैन कॉल्ड अबिनादाब. अबिनादाब.
और फिर अंत में वो अबिनादाब के घर में वो वाचक का संदूक आ पहुंचा.
एंड दैट आर्क रिमेन्ड देयर फॉर 30 years.
और वह वाचा का संदूक उसके घर में 30 साल रहा.
He made one of his son to be the priest minister before the ark.
और उसने अपने एक बेटे को याचक बनाया ताकि वो सेविका करे वाचा के संदूक के
It
सामने.
It remained till the whole reign of Saul's rule in Israel.
और इज़राइल में शाऊल का जो राज्य था उसके राज्य भर के समय में वो वहाँ पर था.
Then David becomes the king.
फिर दाऊद राजा बनता है.
And the first thing that David is after the ark of the covenant.
और पहली बात जो दाऊद करता है वो इस वाचा के संदूक को लेकर.
And he says, without this, I'm not going forward.
और वो कहता है कि इसको लेके बिना मैं आगे नहीं जाऊंगा.
If I have this, I will have victory.
और अगर ये मेरे पास है तो मेरे पास विजय है.
And you know that they take the with lot of worship leaders and lot of sacrifices, they take the ark.
और आप जानते हैं कि वहां पर सारी बातें लिखी है जिसमें वो बड़े आनंद के साथ स्तुति गाते हुए नाचते हुए वाचा के संदूक को लेकर जाते हैं.
And the cart stumbles.
और वो जिस पर ये रखा है वो गाड़ी वो थोड़ी सी लड़खड़ाती है.
And Uzzah, who was the son of Abinadab,
और उजा जो अबिनादाब का बेटा था.
He went and touched this ark.
और वो वाचा के संदूक को छूता है.
He helped this ark to be sturdy.
और वो गिर नहीं पाए उसके लिए उसे छू लेता
and
है.
The Bible says Uzzah was put to death there.
और शास्त्र में लिखा है उजा वहां पर मृत्युमुखी हुआ.
There was familiarity, there was contempt, and you know he was put to death there.
और वहां पर उसमें उसके वो बात की वजह से वो वहां पर मर गया.
Then it says it was you know it went and reached in somebody's home called Obad-Edom.
और फिर ओबाद-एदोम के घर में वो वाचा का संदूक पहुंच
And
गया.
The ark of the covenant remained there for 3 months.
और वहां वाचा का संदूक 3 महीने वहां पर रह गया.
In one place it remained for 30 years.
एक जगह में वो 30 साल रहा.
In another place it remained for 3 months.
और दूसरे जगह में वो 3 महीने वहां पर
And
रह
the Bible
गया.
Says God blessed Obad-Edom.
और शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर ने ओबाद-एदोम को बहुत आशीषित किया.
He blessed his household.
और पूरे घराने को उसने आशीष दिया.
He blessed his children.
और उसके बच्चों को आशीष दे दिया.
He blessed his relatives.
और उसके रिश्तेदारों को उसने.
He blessed his livestock.
और उसके जो भेड़ बकरियां थी उसमें भी उसने आशीष लाया.
He blessed his purse. He blessed his money.
और उसने उसके बटवे को उसके पैसे को भी आशीष किया.
थ्री मंथ्स टाइम He became very famous.
और 3 महीने के अंदर वो बहुत प्रसिद्ध हो गया.
And then David takes the ark to Jerusalem.
और फिर दाऊद जो है यरूशलेम में वाचा के संदूक को लेकर जाता
है. I just want to compare here. This in one place it remained for 30 years and nothing happened to that household.
और मैं आपको ये दो तुलनात्मक बातें बताता हूँ. एक जगह 30 साल वाचा का संदूक रहा वहां कुछ भी नहीं हुआ.
On the contrary, his son was put to death because he was so familiar with this ark, and he said he could touch it, he could do whatever he wants to do, and he was put to death.
इतना कि ऐसा हुआ कि वो उसकी पहचान इतनी करीबी हो गई कि उसको लगा कि हाँ चलता है. उसने हाथ लगाया और वो मर गया वहाँ पर.
But in another place, there's one man. He kept it for 3 months, and his whole household was blessed.
लेकिन दूसरी जगह यहाँ पर एक व्यक्ति है जो 3 महीने वाचा के संदूक को अपने घर में रखता है और पूरा उसका घराना आशीष पाता.
And it says in 1 Chronicles chapter 26 it says he had 68 children, which means 8 children, grandchildren, great-grandchildren, all of them became gatekeepers of the house of God.
और इतिहास की किताब में वहां पर लिखा है कि उसके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, 68 लोग वो वहां पर बन गए. उसका मतलब उन्होंने इतना बड़ा आशीष पाया.
And they all became the gatekeepers.
और वो सब जो है द्वारपाल बन गए.
And David recruited him and he says, now you be the one who will take care of the presence of God.
और दाऊद ने उसे अपने यहां भर्ती किया यह कहते हुए कि तू अब इसको संभालेगा.
You know, what I want to say, we can have the presence, we can have the Holy Spirit with you for 30 years and nothing happens.
मैं ये कहना चाहता हूँ कि 30 साल आपके पास वो पवित्र आत्मा है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा.
Because you don't know what you have.
क्योंकि आपको पता नहीं आपके पास है क्या.
You don't respect the person that you have.
और वो जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है उसका आदर नहीं करते हो.
But one can have the Holy Spirit for 3 months and his whole life and generation down the line can be blessed.
लेकिन एक है जिसके पास 3 महीने तक सिर्फ ये बात है और पूरी उसके खानदान, उसकी वंशावली आशीष पाती है.
How do you look at the presence of God?
परमेश्वर की उपस्थिति की ओर ध्यान दो.
You think you can play with it?
क्या आपको लगता है आप उसके साथ खेल खिलौना कर सकते हैं?
You can be disrespectful with it?
क्या आप उसका अनादर कर सकते हैं?
Abinadab had for 30 years.
और अबिनादाब के पास 30 साल तक था.
Nothing happened.
कुछ भी नहीं हुआ.
It was in one room.
वो एक कोने में था, कमरे में था.
One of the son is looking after.
और एक जो बेटा है बस उसकी देखभाल कैसे भी कर रहा है.
They became over familiar.
और वो थोड़ा ज्यादा ही कुछ उससे के साथ.
We can come to church for 30 years and nothing happens to you.
और हम 30 साल कलीसिया में आते हैं और हमें कुछ भी नहीं होता है.
You read the Bible, you pray, nothing happens to you.
आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, कुछ भी नहीं होता है आपको.
Someone becomes a Christian and he is filled with the Holy Spirit, empowered by the Holy Spirit, and he recognizes something is inside that he cannot play with.
और एक है जो कुछ ही हफ्तों में परमेश्वर को स्वीकार करता है, पवित्र आत्मा से भरता है और वो इस बात को पहचान लेता है कि कुछ खास मेरे अंदर है.
He is precious.
और वो बहुत ही मूल्यवान, कीमती है.
You respect him.
और आप उसको आदर
करते. You nurture him.
और आप उसको संभालते हो.
You worship him.
और आप उसकी आराधना करते
हो. You call upon him.
और आप उसको पुकारते हो.
You recognize his power.
और आप उसके सामर्थ्य को पहचान लेते हो.
And God says, I will bless him.
और परमेश्वर कहता है मैं उसे आशीषित
करूंगा. I will bless the generations after him.
और उसकी आगे वाली पीढ़ी को भी मैं आशीषित करूंगा.
And he will become a gatekeeper of the house of God.
और वो परमेश्वर के घर में वहां पर द्वारपाल बनकर रहेगा.
I want to challenge you today.
मैं आपको आज चुनौती देना चाहता हूं.
Are you Abinadab or your Obadidam?
क्या आप अबिनादाब जैसे हो या ओबादेदोम के जैसे हो?
We can be in the church. There are so many Abinadabs.
और हम कलीसिया में रह सकते हैं. हाँ, कितने सारे हैं जो ओबादिदोम है.
अबिनादाब के जैसा.
ये दोनों नाम मिलते जुलते हैं, क्षमा चाहता हूँ.
But some are Obadidam.
लेकिन कुछ जो है ओबादिदोम है.
We go where the presence of God goes.
और वो वहाँ जाते हैं जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति जाती है.
And the prayer meeting is called. You come. He says, I want to experience Him.
जब प्रार्थना की सभा होती है, आप कहते हो, मैं उसको अनुभव करना चाहता हूँ.
And 6 o'clock is morning. You get up. You know, you don't need to be woken up. He says, oh, I want to fellowship with Him.
और 6 बजे जब आप जाग उठते हो या जब भी आप जाग उठते हो, आप कहते हो मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताना है.
You hold this Bible in respect. Because this has the words of eternal life.
और इसको आप बड़े अच्छे से संभालते हो क्योंकि इसमें अनंत काल के वचन हैं.
Hallelujah.
Hallelujah.
This is our inheritance. We have the Spirit of God.
और यह हमारी विरासत है. परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है.
Church is the community of the Spirit.
और कलीसिया ऐसे ही लोगों का समाज है.
Not I say, look, it's a community of the spirit.
Sorry. Yeah. आत्मा का समाज है.
Very few people understand what church is.
और बहुत कम लोग जानते हैं कलीसिया क्या है.
It's not Sunday meeting.
और यह रविवार की सभा नहीं
It's a community of the spirit.
यह आत्मा का समाज है.
It's not just gathering of people, but it's a community of the spirit. We all have the spirit. We come together and we bring in the presence of God.
बस यह लोगों का एक साथ में मिलना नहीं है, बल्कि आत्मा से भरे हुए लोग जब साथ में मिलते हैं तब.
We are a divine body.
और हम एक अलौकिक शरीर है.
It's a divine. It's beyond what someone can explain.
और कोई इसके समझा नहीं सकता, वो समझने के परे है. यह ऐसा अलौकिक शरीर है.
F.F. Bruce, one of the theologians, this is what he said.
और एक अभ्यासक है F.F. Bruce, वो इस प्रकार से कहता है.
If you don't acknowledge the church, you have not acknowledged salvation. You have not acknowledged Christ, and hence you have no salvation.
और अगर आप say it slowly.
If you have not acknowledged church, you have not acknowledged the salvation that Jesus brings, and you have not acknowledged Christ.
और अगर आप कलीसिया को नहीं पहचानते हो, तो आपने उद्धार को नहीं समझा है, और आप उस मसीह को नहीं समझ पा रहे हो.
Hence, there is no salvation.
इसके लिए आपका उद्धार नहीं हुआ.
Finally,
और अंत में.
I want to finish in
2 minutes. और 2 मिनट में.
Heavenly rewards.
और स्वर्ग के फल.
New identity in Christ.
और यीशु मसीह में नई पहचान.
And life in the spirit.
आत्मा में जीवन.
And heavenly rewards.
और स्वर्गीय फल या स्वर्गीय पुरस्कार. थैंक यू.
There are many crowns waiting for us.
और बहुत सारे ऐसे मुकुट आपके लिए है.
New Testament speaks of 5 crowns.
और नए करार में 5 ऐसे मुकुटों के बारे में बताया है.
Good to go through it and see what are those crowns.
अच्छा है कि आप उसे पढ़े और जाने क्या है वो.
Paul says in 2 Timothy, he says, I fought the fight, I've run the good race, now awaits me a crown of righteousness.
और पौलुस 2 तिमोथियों के अध्याय में वहां पर कहता है कि मैंने अपनी लड़ाई लड़ी है, अपनी दौड़ भागी है, और मेरे लिए अब वो पुरस्कार का इंतजार है.
You know, when you get to heaven, God is going to ask you only 2 questions.
जब आप स्वर्ग में जाओगे तो परमेश्वर आपसे सिर्फ 2 प्रश्न पूछने वाला है.
You know what are those 2 questions?
पता है वो 2 प्रश्न क्या है?
Did you receive my son, Jesus?
क्या आपने मेरे बेटे को स्वीकार किया, यीशु को स्वीकार किया है?
And if so,
अगर ऐसा किया है तो
what did you do with the life that he gave you?
तो आपको जो जीवन उसने दिया उसके साथ आपने क्या किया?
He's not going to ask you, oh, you're a pastor, huh? What did you do?
आपको ये नहीं पूछने वाले, हाँ तो आप पासवान हैं, हाँ क्या किया आपने?
He's going to ask you, what did you do with the life I gave you?
और वो आपको पूछने वाला है, जो जीवन मैंने आपको दिया था, क्या किया उसके साथ आपने?
Are we storing up riches in heaven?
क्या हम हमारी विरासत को स्वर्ग में जमा कर रहे हैं?
That's part of our true inheritance.
और वो हमारे विरासत का मुख्य भाग है.
Some of them are in heaven.
और कुछ जो है वो स्वर्ग में है.
Yeah, we got to, you know, Bible says, Jesus said, even if you give a cup of cold water to someone, there's a reward for you.
और यीशु ने कहा है, शास्त्र में लिखा है कि अगर आप किसी को ठंडे पानी का प्याला भी देते हैं तो वो उसका भी पुरस्कार आपको वहां पर रखा गया.
The Bible says there is one star differ from another in splendor, so shall be in heaven. You know, we are going to differ in terms of the reward. Some will get more, some will get less.
और एक प्रकार से वहां पर फर्क होगा स्वर्ग में. कुछों को है ज्यादा पुरस्कार मिलेंगे, कुछों को कम मिलेंगे.
You know something?
पता है आपको?
You know the ones that you reach out to?
और आप जिन तक पहुंचते हो?
In heaven.
स्वर्ग में.
The time of rewards.
और जब पुरस्कार का समय आएगा?
Those whom you reached out, they will line up before you.
और जिन तक आप पहुंचे हैं वो आपके सामने खड़े हो जाएंगे.
Pat will have a big crowd behind him.
और पैट के पीछे बहुत बड़ी भीड़ होगी.
I want to ask you, will you have someone standing behind you because you shared the gospel?
मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पीछे कोई ऐसा कतार में रहेगा क्योंकि आपने सुसमाचार बांटा है?
You brought someone to Christ.
आपने किसी को लेकर आए यीशु के पास.
Jesus is going to say, this is your crown.
और यीशु कहेगा कि ये
reached out to them.
और ये तुम्हारे मुकुट है, तुम उनके पास आए.
Let's have a big crowd.
और आइए हम उस हमारे पीछे बड़ी भीड़ को तैयार करें।
कॉम्पीट विद पैट प्लीज डू सो।
अगर किसी को पैट के साथ शर्त लगाना है आप जरूर कर सकते हैं।
दैट विल बी द क्राउन।
और वो तुम्हारे लिए मुकुट होगा।
डिस्प्ले।
और वो रखा जाएगा सामने।
बाइबल सेज डू नॉट थ्रो अवे योर कॉन्फिडेंस।
और बाइबल हमें बताता है कि अपने आत्मविश्वास को खो नहीं।
इट विल बी रिचली रिवॉर्डेड।
और वो अच्छे से उसका फल आपको मिलेगा।
यू विल रिसीव व्हाट हैज बीन प्रॉमिस्ड।
और जो वादा किया है वो आपको जरूर मिलेगा।
जीसस इज आवर ट्रू इनहेरिटेंस।
और यीशु हमारे लिए सही विरासत है। होली स्पिरिट इज आवर इनहेरिटेंस। और पवित्र आत्मा हमारे लिए वो विरासत है।
हिज रिवॉर्ड्स आर इन हिज हैंड्स।
और वो पुरस्कार जो हमारे लिए है उसके हाथों में है।
लेट्स पर्स्यू।
और हम धीरज रखे और इसके पीछे लगातार रहे।
Let's pursue. Let's not be like Abinadab.
और वो अबिनादाब के जैसा नहीं बने। हम लगातार उसका पीछा करें।
No faith, no reverence, no honor, no hunger. Let's be like Obed-Edom.
और ऐसा नहीं बने वो अबिनादाब की तरह की कोई विश्वास नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई आदर नहीं, बल्कि हम ओबेदेदोम के जैसे बने।
Let's be people who will live out the inheritance that God has given to us.
और हम ऐसे लोग बने जो विरासत परमेश्वर ने हमें दी है उसका हम ख्याल करें।
Father, we just want to thank you.
पिता हम धन्यवाद करते हैं।
You are indeed given us.
और तूने सही मायने में हमें दिया
है। More than we can even comprehend, Lord God.
और जितना हम संभाल भी नहीं पाएंगे उतना।
The most learned person on earth can even not even scratch the surface of what you have done.
और जो बहुत ही पढ़ा लिखा ज्ञानी है वो भी वो ऊपरी हिस्से को भी खरोच कर वो उसे पा नहीं सकता।
You have given us amazing things.
और तूने हमें बहुत ही अद्भुत बातें दी।
You have given us a new identity in Christ, Lord.
और तूने हमें यीशु मसीह में नई पहचान दी है।
Life in the spirit,
Lord. और आत्मा में जीवन दिया है।
You've given us rewards, Lord.
और तूने हमें पुरस्कार दिए हैं।
Lord, help us to, Lord, really inherit, Lord God, what has been promised.
और प्रभु जो तूने वादा किया है वो सही मायने में पाने के लिए हमें
we'll
मदद
not
कर।
shrink back, Lord, like some,
हम सिकुड़ नहीं जाएंगे जैसे कुछ हो गए हैं।
But by faith,
लेकिन विश्वास से
we'll inherit what has been promised,
और जो भी हमें वादा दिया
help
है वो हम पाएंगे। हमें मदद कर।
Thank you, Lord, for this morning.
धन्यवाद इस सुबह के लिए।
We glorify you in Jesus name.
हम यीशु के नाम में आपका आदर करते हैं।
आमेन।
आमेन।
गॉड ब्लेस यू।
और प्रभु आपको आशीषित करे।